हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा आज पुनः आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपके पेपर MSHA 522A के फिफ्थ यूनिट का टॉपिक है ट्रेड इन स्पाइसेस, उस विषय पर चर्चा करूँगी। इस विषय में खासतौर से जो भारत से गर्म मसालों का व्यापार किया जाता था उससे संबंधित लेक्चर होंगे, क्योंकि आपका टॉपिक ही है ट्रेड इन स्पाइसेस। यह जो टॉपिक है ये भी शॉर्ट नोट या 10 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और प्रायः इस पर इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को विस्तार में समझते हैं। छात्रों, आप सब जानते हैं कि किसी भी देश की जो आर्थिक समृद्धि होती है उसमें कृषि के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, और भारत भी इसकी महत्ता को समझते हुए प्राचीन काल से ही विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक गतिविधियों को अत्यंत आवश्यक समझता था। और यदि हम भारत के इतिहास को देखें तो ऐसा लगता है कि प्रागैतिहासिक काल से ही भारत का जो व्यापारिक संबंध है वह पाश्चात्य देशों के अनेक देशों के साथ स्थापित था, पाश्चात्य जगत के अनेक देशों के साथ स्थापित था। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखें तो ऐसा लगता है कि इस समय भी जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे उनका जो व्यापारिक संबंध है मेसोपोटामिया या अन्य देशों के साथ बना हुआ था, जिसकी सूचना हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। इसी प्रकार वैदिक युग में भी हम देखें तो पाश्चात्य जगत के साथ भारत का व्यापार अबाध रूप से चलता रहा। जहाँ तक 600 BC की बात है तो उस समय भी हम लोगों को जितने भी बौद्ध साहित्य हैं उनसे ये सूचना मिलती है कि भारत और पश्चिमी देशों के जो व्यापारिक संबंध हैं वो और दृढ़ हो गए थे और कई देशों के साथ भारत का व्यापार चलता था। इस समय हम लोगों को बहुत सारे बंदरगाहों का भी रेफरेंस मिलता है जिससे पाश्चात्य देशों को भारत के व्यापारी जाया करते थे। उदाहरण के लिए आपको ध्यान होगा कि भरुकक्ष या भड़ौच इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, और भरुकक्ष एक ऐसा बंदरगाह था जहां से पश्चिमी जगत को जाने वाले जहाज जाया करते थे। आगे हम देखते हैं कि जब लाल सागर से जाने वाले एक नए समुद्री मार्ग का पता चलता है तब भारत का जो पाश्चात्य देशों से संपर्क है वो और तेज हो जाता है, और भारत के व्यापार को और दृढ़ता मिली जब मौर्यों ने यहाँ पर एक राजनीतिक दृष्टि से स्थिर शासन को स्थापित किया। और इस समय भारत का व्यापार पश्चिमी जगत के अनेक देशों मिश्र, सीरिया, यूनान या अन्य देशों के साथ भी विस्तारित होता गया। मौर्यों के बाद हम देखें तो सातवाहन और कुषाणों ने भी भारत के वैदेशिक व्यापार की प्रगति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इस समय तक हम लोगों को भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अनेक बंदरगाह का रेफरेंस मिलता है जिससे भारत का व्यापार होता था। इसमें कल्याण, सोपारा, भरुकच या और भी अनेक प्रकार के बंदरगाहों का रेफरेंस मिलता है जिसके बारे में आप पूर्व परिचित हैं। भारत के व्यापार में और तेजी आती है जब पहली शताब्दी ईस्वी में यूनानी नाविक हिप्पोलस के द्वारा मानसूनी हवाओं का पता लगाया गया, तो इससे जो भारत का व्यापार है वो और तेज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो भारत या पूर्वी देशों से मिश्र को जो जहाज साल भर में कम से कम 20 जहाज पहुंच पाते थे, अब वह प्रतिदिन एक जहाज मिस्र को जाने लगा। तो कहीं ना कहीं जो ये मानसूनी हवा थी उसने भी व्यापार की प्रगति में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। तो इन सभी उदाहरण से ये क्लियर है कि भारत का व्यापार बहुत पहले से ही अनेक देशों के साथ स्थापित था, और भारत अनेक प्रकार की वस्तुओं का आयात और निर्यात करता था। अगर हम देखें तो लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत से जो भी चीज़ें निर्यात की जाती थी उसमें सर्वाधिक जो महत्व की चीज़ थी वो थी गरम मसाला, और गरम मसाले में भी जो गोल मिर्च है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी, और इसको बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़े स्केल पे यूनान, रोम, पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। और केवल अगर गोल्ड मिर्च की बात करें तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर था इन देशों में, खासतौर से पश्चिमी देशों में, कि इसे लोग यवन प्रिय कहते थे। ठीक है, इसे यवन प्रिय कहा जाता था, इसे इतना ज़्यादा लोगों को द्वारा पसंद किया जाता था। गोल मिर्च के अलावा अगर हम देखें तो गरम मसालों में बहुत सारी सामग्री थी जिसको विदेशों में भेजा जाता था और जिसकी पाश्चात्य जगत में बहुत डिमांड थी। अगर इस दृष्टि से देखें तो गरम मसाले के अंतर्गत इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, बालछड़, काली मिर्च, सौंठ, इन सभी का निर्यात बाहरी देशों को किया जाता था। और आप सब जानते हैं कि भारत और रोम का जो व्यापारिक संबंध है वह बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था और भारत रोम को बहुत सारी सामग्रियों को भेजने का कार्य करता था। आपको मैंने क्लास में भी बताया था, जब हम लोग रोम की चर्चा कर रहे थे, रोम के व्यापार की चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि खास तौर से जो रोम है वो भारत से जितनी भी विलासिता की सामग्री है उन सभी चीज़ों को मंगाने का कार्य करता था। और चूँकि इसके बदले रोम के पास कुछ भी नहीं रहता था तो वह अपना बहुमूल्य सोना जो है वो इंडिया को देता था। तो इस तरह से जो रोम के साथ भारत का व्यापार हुआ करता था वो भारत के संतुलन में रहता था और भारत को इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो ये तो क्लियर है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम का व्यापार अत्यंत उन्नतशील था, लेकिन जब रोम साम्राज्य का विभाजन होता है, उसका जब पतन होना शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं जो भारत और रोम के व्यापार है उस पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आती है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कमी तो आती है लेकिन ये पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। और भारतीय सामग्री में गरम मसाले के अंतर्गत गोलमिर्च की जो लोकप्रियता थी उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 408 ईस्वी में हुण आक्रांता एलरिक ने रोम को मुक्त किया तो उसने रोमवासियों से 3000 पौंड काली मिर्च तथा 4000 थान रेशम के वस्त्र मांगे थे। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में रोमवासी कहाँ से काली मिर्च देंगे? तो ये तभी संभव होता जब भारत के साथ उसका व्यापार चलता रहता। तो इतनी अधिक मात्रा में काली मिर्च और रेशम की मांग किए जाने से ये स्पष्ट है कि अभी भी भारत और रोम के जो व्यापार है वो गतिशील थे। चौथी पांचवी छठी शताब्दी में बिजेंटाइन साम्राज्य में भी भारतीय मसालों की लोकप्रियता का उल्लेख हमें साहित्य से प्राप्त होता है। एक स्कॉलर है, उसका नाम है जस्टिनियन। जस्टिनियन ने अपने जो कानून की संहिता है उसका नाम है कार्पस ज्यूरिस सिविलिस, ठीक है, कार्पस ज्यूरिस सिविलिस। इस बुक में उसने भारत से रोम जाने वाली वस्तुओं में जिन जिन वस्तुओं का उल्लेख किया है उनके साथ साथ उसने गरम मसालों में दालचीनी, पीपर, सफ़ेद काली मिर्च, पालछड़, अदरक, इलायची का भी उल्लेख किया है। और ये रेफरेंस मिलता है कि भारतीय मसाले जो बेजेंटाइन साम्राज्य के धनी निवासी थे उनके दैनिक जीवन का एक आवश्यक वस्तु बन गया था। कुछ और भी ऐसे मसालों का उल्लेख मिलता है जिसे भारत को अन्य देशों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के लिए इथोपिया से कई मसाले जैसे तेजपत्ता, लोबान भारत को निर्यात किया जाता था। तो ठीक है, आप डाउट में नहीं रहिएगा, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें भारत भी वहां से मंगाता था। तो इस संदर्भ में इथोपिया का रेफरेंस मिलता है जहाँ से तेजपत्ता, लोबान भारत को निर्यात किया जाता था। इसके साथ ही साथ बालहीक से घोड़ों के अतिरिक्त केसर और हींग भी भारत में लाई जाती थी। इसके बाद अगर हम देखें तो इन गरम मसालों में जायफल को भारत से बाहर भेजा जाता था। इसके अतिरिक्त इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, बालछड़, काले मिर्च, सौंठ का निर्यात बाहरी देशों से किया जाता था। ठीक है, अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो जैसे कुछ चीज़ें थी हींग या केसर, तेजपत्ता, वो मंगाया भी जाता था और फिर भारत से दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल में भी जो मसाले हैं उनका व्यापार पूर्वत जारी रहता है और भारत से अरब कंट्रीज़ को कस्तूरी, अगर, कपूर, मोती, हीरा, मूंगा, औषधियाँ आदि भेजी जाती थी। एक मुस्लिम लेखक लिखता है कि भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में चंदन, जायफल, लौंग, कबाब चीनी, नारियल तथा अन्य सामग्री थे। बेंजामिन ने यह सूचना दी है कि भारत से सर्वाधिक निर्यात मसालों का किया जाता था और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भारत कपूर, लौंग, चंदन, इलायची आयात भी करता था। बालछड़ और अगर भी भारत आती थी। इसी तरह अगर हम पेरिप्लस के अकाउंट्स को देखें तो वो दक्षिण भारत के कई ऐसे बंदरगाहों का रेफरेंस देता है जहां से इस प्रकार के गरम मसालों को पाश्चात्य जगत में भेजा जाता था। पेरिप्लस ये बताता है कि नौरा यानी कन्नौर, तोडरी यानी टिंडिस, मुजीरिस यानी केरल का क्रंगनौर जो पेरियार नदी के तट पर कोचीन के समीप स्थित था, इन सभी बंदरगाहों से पश्चिमी देशों को भारत के व्यापारी जाया करते थे। खास तौर से पेरिप्लस मुजीरिस को काली मिर्च का बंदरगाह कहता है और वह कहता है कि पश्चिमी समुद्र तट के बंदरगाह पर अनेक प्रकार के व्यापारी निवास करते थे और ये भी कहता है कि इन सभी पश्चिमी तट पर जो ग्रीक व्यापारी हैं, जो यमन व्यापारी हैं, वह मुशीरी या मुजीरिस पर सोना लेकर व्यापार करने आते थे और जिसके बदले वह गोल मिर्च, मोती, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, जटामासी आदि क्रय करते थे। यानी ये सभी जो व्यापारी हैं इन सभी चीज़ों के बदले भारत को सोना देकर के जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो यवन व्यापारी हैं वो भारत के व्यापार जगत के लिए बहुत ही फ्रूटफुल थे, बहुत ही लाभदायक थे और ऐसा रेफरेंस मिलता है कि इन ग्रीक व्यापारियों का दक्षिण भारत के शासकों द्वारा विशेष ध्यान रखा जाता था। तो अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में ऐसे अनेक स्थान थे जिसपे अनेक प्रकार के अन्नों का उत्पादन किया जाता था और जिस प्रकार उत्तर भारत के शासकों ने कृषि को इम्पोर्टेंस देते हुए कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया, उसी प्रकार हमको यह भी रेफरेंस मिलता है कि दक्षिण भारत के शासकों ने भी व्यापार और वाणिज्य को उन्नतशील बनाने के अनेक प्रयास किए। दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो दक्षिण की जलवायु थी और अनुकूल वातावरण था उसने भी अनेक प्रकार के अन्नों के उत्पादन को संभव बनाया और तत्कालीन साहित्य जो खासतौर से संगम साहित्य है या जो तमिल साहित्य है उससे दक्षिण भारत में उगाने वाले विभिन्न वस्तुओं की जानकारी भी मिलती है। इन विभिन्न वस्तुओं में अनेक ऐसे मसालों का उल्लेख मिलता है जो अलग अलग स्थानों पर उत्पन्न किया जाता था और मार्को पोलो भी इस प्रकार के अन्नों का हमको रेफरेंस देता है। जैसे मार्को पोलो कहता है कि पांड्य देश में अदरक तथा दालचीनी के पैदावार की जाती थी। एक मुस्लिम लेखक याकूत भी बताता है कि पांड्य देश की पहाड़ियों में कपूर की पैदावार की जाती थी। इदरीसी भी यह बताता है कि मालाबार की पहाड़ियों में इलायची की खेती की जाती थी और एक अन्य मुस्लिम लेखक इब्न सईद भी इसी प्रकार की सूचना देता है। वह भी कहता है कि मालाबार पहाड़ी पर गोल मिर्च का उत्पादन किया जाता था। तो निश्चित रूप से इन गरम मसालों की विदेशों में बहुत ही अत्यंत डिमांड थी और इन मसालों का विदेशों में विभिन्न मार्गों के द्वारा निर्यात किया जाता था। इस संबंध में हमारे पास एक अभिलेखीय स्रोत भी है जो इसकी सूचना देते हैं कि किस प्रकार से भारत में इन वस्तुओं का व्यापारियों के द्वारा निर्यात किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इंस्क्रिप्शन का रेफरेंस देती हूँ जो शिमोगा यानी शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट से मिला है, संभवतः यह कर्नाटक में है और ये जो अभिलेख है वह 1054 का है। इस प्रशस्ति में खास तौर से जो नाना देशी संगठन है उनके व्यापारियों की चर्चा है और इस लेख में या लिखा है या इस प्रशस्ति में या लिखा है कि नाना देशी संगठन के व्यापारी जल और स्थल मार्गों से 6 महाद्वीपों की यात्रा करते थे, और उसमें ये भी लिखा है कि वे सुंदर हाथियों, घोड़ों, नीलम, चंद्रमणि, मोतियों, रूबियों, हारों, वैदुर्य, पुष्पराग, मरकत जैसी बहुमूल्य वस्तुओं के साथ इलायची, लवंग, गुगुल, चंदन, केसर, कपूर, कस्तूरी तथा अन्य मसालों एवं इत्रों का व्यापार करते थे। चाउ जू कुआ, जो एक चीनी राइटर है, चाउ जू कुआ से भी पता चलता है कि 10वीं 12वीं सदी में भारतीय गरम मसालों तथा विलासिता की सामग्री की मांग चीन में बहुत बढ़ गई थी। यानी अभी तो हम लोग देख रहे थे पश्चिमी जगत और साथ ही साथ रोम जैसे देशों का रेफरेंस मिल रहा था, अब आप देखिए तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, खासतौर से पूर्वी साइड के देशों से भी भारत के व्यापार की सूचना मिल रही है। उसमें चीन का रेफरेंस मिलता है, जहाँ पर यह लिखा है कि इन भारतीय गर्म मसालों और विलासिता की वस्तुओं की डिमांड चीन में बहुत बढ़ गई थी और चीन इसके बदले काफ़ी सोना और चांदी भारत में भेजता था, लगभग जैसा रोम करता था। और ऐसा भी रेफरेंस मिलता है कि रोम के ही समान चीन को भी मालाबार तथा क्विलॉन, क्विलॉन मीन्स कल्याण, तो चीन को भी मालाबार और क्विलॉन के साथ अपने व्यापार पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि चीन को कितना अपना बहुमूल्य स्वर्ण इन गर्म मसालों के बदले भारत को भेजना पड़ता था, और जिसकी वजह से उसने मालाबार और कल्याण के साथ अपने व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। इसी प्रकार पूर्व मध्य काल में भी हम लोगों को फारस की खाड़ी में स्थित सिराफ नामक प्रमुख व्यापारिक केंद्र का रेफरेंस मिलता है। अब चूंकि इस समय तक अरब यात्री भी आ चुके थे, अरबों का भी आगमन भारत में हो चुका था, और अब भारत का जो व्यापार है अरब कंट्रीज के साथ भी दिखाई देता है, और ऐसी स्थिति में फारस की खाड़ी में स्थित जो सिराफ है वह प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन जाता है। और ये एशिया का इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहाँ से चीन, जावा, भारत आदि देशों के व्यापारी इकट्ठा होते थे, और ऐसा रेफरेंस मिलता है कि यहाँ लाई जाने वाली वस्तुओं में दक्षिण भारतीय माल सबसे अधिक होता था। और अगर अरब लेखकों की बात करें तो ये पता चलता है कि भारत से जिन वस्तुओं का अरब देशों के व्यापारियों द्वारा व्यापार किया जाता था उसमें बहुमूल्य वस्तुओं के साथ गरम मसालों में गोल मिर्च भी होता था। इब्न खुरदुआ यह कहता है कि चंदन, कपूर, लौंग, कबाब चीनी, काले मिर्च आदि इराक तथा अरब देशों को भेजा जाता था। तो इन सभी विवरणों से यह स्पष्ट है कि कहीं न कहीं जो भारत के निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक जो प्रचलित सामग्री हुआ करती थी उसमें गरम मसालों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। और आगे आप देखते हैं कि जो ये सिरप नामक स्थान है, सिरप का स्थान आगे चल करके किश नामक व्यापारिक केंद्र ने ले लिया। तो स्टूडेंट्स, इन उदाहरणों से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भारत के मसाले थे वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य जगत में बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, और इवन आज भी अगर आप देखें आज के संदर्भ में भी आप बहुत सारे व्यापारिक गतिविधियों को अपने आंसर में जोड़ सकते हैं। आज भी मैंने जो पेपर में पढ़ा कि भारत से कच्ची जो हल्दी है वो अमेरिका को भेजी जाएगी, तो आप देखिए कि न केवल एंशियंट टाइम में बल्कि आज भी जो भारत के गर्म मसालों की बहुत सामग्रियां हैं उनकी डिमांड अलग अलग देशों में बनी हुई है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत इन व्यापारिक वस्तुओं के द्वारा कहीं ना कहीं अपने आर्थिक जगत को और समृद्ध करता था, और देश को समृद्ध बनाने में इस प्रकार के वैदेशिक व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। थैंक यू।